सहनौनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया और कर्मयोग के बारे में भी बताया। तो अर्जुन को एक संशय हो गया, एक डाउट हो गया कि शायद दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग है, और भगवान ने दोनों की प्रशंसा द्वितीय अध्याय में की है। ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा की है और कर्म योग की भी बहुत प्रशंसा की है। तो अर्जुन को लगा कि मेरे को इसमें से एक पक लेना है, कर्म योग के अंदर कर्म करना पड़ेगा और ज्ञान योग में कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो बेहतर कौन सा है? ज्ञान योग, कर्म नहीं करना पड़ेगा तो कर्म वाला वो अच्छा है। मगर भगवान बार बार उसको एक ही बात कहते हैं, कर्म करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। आपको क्या लगता है, दो मार्ग है कि एक मार्ग है? एक मार्ग है। शुरू कहां से करना है? कर्मयोग है क्या? जो भी करो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान के लिए हो, ऐसा नहीं है, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर भगवान के लिए हम सब कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या गड़बड़ी आएगी? क्या फर्क है भगवान के लिए करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना? एक वर्ड जोड़ देने से क्या फर्क हुआ? फिर आप झूठ बोलोगे, भगवान के लिए झूठ बोल दिया। मगर आप अगर ये सोचोगे कि ये झूठ क्या भगवान को प्रसन्न करेगा, तब क्या उत्तर मिलेगा?
नहीं,
नहीं। फिर आप झूठ बोलोगे, नहीं करोगे, तो कोई भी निषिद्ध कर्म आप नहीं कर पाओगे। लोग तो ऐसे ही समझते हैं ना कि बस जो है भगवान को समर्पण, भगवान को समर्पण, भगवान को समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये देखना है। अभी किसके लिए हम कर्म करते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए। दूसरों की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हम, हमारी प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न, उसका संशय यह था कि उसको लगता था कि ये दो मार्ग हैं, हमको एक इसमें से चूज करना है। तो पहले ही प्रश्न में कर देता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणी घोरे माम नियोजसी केशव। अगर आप ये सोचते हो कि ज्ञान जो है कर्म से श्रेष्ठ है, बेहतर है, तो मेरे को ये घोर कर्म में क्यों डालते हो? घोर कर्म क्या? युद्ध करने को, मारो सबको, घोर कर्म है, क्यों कहते हो? फिर साथ साथ ये भी कहता है, व्यामिश्रण एव वाक्येन बुद्धि मोयसीव में तदेकं बद निश्चित येन श्रेयो अमा। आप दोनों में से मेरे को एक बताओ। आपने दोनों की प्रशंसा की है ना, तो आपके वाक्य जो है मिश्रित है, ठीक समझ में नहीं आया। इसकी भी प्रशंसा करते हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो और ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हो, तो मेरे को बताओ, एक बताओ निश्चित रूप से क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि ये मैंने पहले ही तुमको कह दिया था, गीता सुनाने के पहले हमने बताया था कि इसके अंदर यहाँ पर दो निष्ठाएं हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग कर्मयोग है, कर्मयोग है। तो मरीचि आदि ऋषि को उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग दिया, कर्मयोग करो, और सनक सनंदन सनातन इनको क्या दिया? उनको निवृत्ति मार्ग, उनको ज्ञान मार्ग दे दिया। तो दो निष्ठाएं भगवान कहते हैं मैंने शुरू में ही, ये जगत बनने के पहले ये दो निष्ठाएं हमने बनाई हैं। अब पूरा प्रोक्ता पिछले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में आपको बताया भी हमने कि दो किस्म की निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग है और कर्म योग है। मगर ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए कर्म बहुत जरूरी है। आपकी योग्यता तब बनेगी अगर आप कर्मयोग करोगे। कर्मयोग नहीं करते हो तो आप योग्य नहीं हो ज्ञान के। ज्ञान जो देना था भगवान ने अर्जुन को दे दिया दूसरे अध्याय में, पर अर्जुन को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? योग्यता नहीं है। योग्यता कैसे बनेगी ज्ञान की? योग्यता तब बनेगी कि कर्मयोग करना होगा। भगवान चाहते तो उसको योग्य बना सकते थे मगर बनाया नहीं। उसको कहा तुमको युद्ध करना होगा और जैसे हम कहते हैं वैसे करना होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा। युद्ध किया, उसके युद्ध से जो है उसको अंत में जाके वो कहता है कि हमारा मोह खत्म हो गया, डिल्यूशन खत्म हो गया, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, अब भगवान जो कहोगे वो करेंगे। और दूसरे अध्याय से भगवान कहते जाते हैं युद्ध करो, उत्तिष्ठ, खड़ो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, नहीं खड़ा होता है। तो ज्ञान की योग्यता पाने के लिए कर्म योग करना होगा। कर्म योग क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है और हर कर्म कर्म फल लेके आएगा। हर कर्म कर्मफल लेके आएगा। जो कर्मफल मिले उसको आप प्रसाद रूप से ले लो। कर्मफल कौन देता है? भगवान देते हैं। तो भगवान सोच समझ के देते हैं कि आपको आगे क्या लगेगा, आपने पीछे कितने अच्छे काम किए हैं या विपरीत काम किए हैं, निषिद्ध कर्म कितने किए हैं और आगे क्या क्या चाहिए आपको, सब देख के आपको कर्मफल देते हैं। तो इसलिए उसको प्रसाद रूप में ले लो। तो दो चीजें कर्म योग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो और दूसरा प्रसाद रूप से लेना है। कोई नए कर्म नहीं करने हैं, आप जो करते हो वही करो। आप रसोई बनाते हो तो उस टाइम सोचो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं। अगर ये सोच के आप रसोई बनाओगे ना, देखो वो रसोई उस दिन कितनी अच्छी बनेगी, खाना बहुत अच्छा बनेगा। और जो भी कर्म फल मिल जाए प्रसाद रूप से ले लो। ऐसा सोच के अगर करोगे तो वो आपका वही कर्म कर्म योग बन जाएगा। योग मतलब युज धातु, आपको जोड़ देगा। किससे जोड़ देगा? भगवान से जोड़ देगा। आपका मन शुद्ध होता जाएगा और ज्ञान पाने के बाद में क्या होगा? नैष्कर्म में हो जाएगा। नैष्कर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आदमी आलसी हो जाता है या काम नहीं करता है। निष्कर्म का ये मतलब होता है कि वो हाईएस्ट स्टेट है, नॉलेज है, रियलाइजेशन है, ज्ञानी है। ज्ञानी चुप से बैठता नहीं है, ज्ञानी बहुत काम करता है मगर उसमें कर्तृत्व नहीं है। क्योंकि कर्तृत्व नहीं है, कोई कामना नहीं है, इसलिए वो कर्म उसको बांधता नहीं है। बाकी जितने भी कर्म हम करते हैं ना, आज तक जितने करते आए हैं, अगर आपने कर्मयोग नहीं किया है तो वो सारे के सारे कर्म आपके साकाम कर्म हुए और साकाम कर्म आपको बांधेंगे। तो ज्ञानी जो है वो निष्क्रिय नहीं होता, अक्रिय होता है। दो शब्द होते हैं ना, एक निष्क्रिय कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करता है मगर अक्रिय। कर्तृत्व उसमें नहीं है, उसमें वो कर्म में फंसता नहीं है, कर्म से बनता नहीं है। तो हमको कैसे निष्कर्म मिलेगा? आपको हमने बताया था निष्कर्म कैसे मिलता है, नेस, कर्म का मतलब होता है एक्शनलेसनेस। एक्शनलेसनेस कैसे मिलेगा? कर्म नहीं करने से मिलेगा क्या? नहीं। और जो कर्म शुरू कर दिया है उसको बंद करने से मिल जाएगा नैष्कर्म? नहीं। अर्जुन ऐसा ही सोच रहा था कि हमको नैष्कर्म मिल जाएगा, कैसे? काम नहीं करेंगे। वो तो युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता था ना, नैष्कर्म हो जाएगा। नैष्कर्म मतलब होता है कि सिद्धि मिल गई आपको, ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने से क्या होता है? ज्ञान मिलने से आपकी अविद्या गई। अविद्या गई तो आपको अब लगेगा हम पूर्ण हैं, अपूर्ण नहीं है। अज्ञानी क्या सोचता है? हम अपूर्ण हैं। तो अपने को पूर्ण करने के लिए फिर उसके मन में कामनाएं आती हैं, एक मकान, दो मकान, एक गाड़ी, दो गाड़ी, 1 मिलियन, 1 बिलियन कामनाएं आएगी। इतना मिल जाएगा तो हम पूर्ण हो जाएंगे। सारा जीवन निकल जाता है, पूर्ण नहीं होता है। कामना के कारण फिर एक्शन, कर्म करना पड़ता है। और नैष्कर्म का मतलब होता है एक्शनलेसनेस। तो एक्शनलेसनेस कैसे आएगा? जब आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी, आप ज्ञानी बन जाओगे, आप पूर्ण बन गए, अब आपको संसार के विषयों से सुख नहीं मिलेगा। आप संसार के विषयों में दौड़ के जाके वहां सुख नहीं खोजोगे। खाना पीना लगेगा, भूख प्यास ज्ञानी को भी लगती है, मगर हम लोग जो दौड़ते हैं इतना मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, वो नहीं करता। वो उसको नहीं चाहिए। तो ये नैष्कर्म मिलेगा कैसे हमें? बोले विचार करो, विचार से आपको मिलेगा। प्रमाण पूर्वक विचार होना चाहिए। प्रमाण पूर्वक मतलब उसका नॉलेज कहां से मिलेगा हमको, प्रमाण क्या है उसका? प्रमाण मतलब यहां प्रूफ नहीं, प्रमाण मतलब ये ज्ञान कहां से मिलेगा। तो ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? वेद से मिलेगा, गीता से मिलेगा, उपनिषद से मिलेगा। तो उनका प्रमाण पूर्वक अगर आप विचार करेंगे तो आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान मिलेगा तो आपको नैष्कर्म भी मिल जाएगा। ये कर्तव्य कर्म हमको कैसे करना है? तो बोलते सेवा भाव से करना है। एक तो हमने देखा कर्तव्य कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान पर प्रसन्न कैसे होंगे? सेवा करनी है, और जो भी फल आएगा उसको हम प्रसाद के ऊपर हिसाब से लेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन ये है कि ज्ञान सबसे ऊपर है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। मगर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन बनाना है। वो मन कैसे बनेगा? उसकी मन की योग्यता कैसे आएगी? तो मन की योग्यता कर्म योग से आएगी, सेवा भाव से आएगी, प्रसाद बुद्धि से आएगी। ये करने के बाद में आपका मन तैयार हुआ, जब मन तैयार हुआ उसके बाद में आपको ज्ञान देंगे, तुरंत काम हो जाएगा। ज्ञान तो हम लोग रोज देते रहते हैं, काम नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ? मन योग्य नहीं अभी हुआ, योग्यता नहीं आई है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है अपना कर्तव्य कर्म करो। सबको अपना अपना कर्तव्य कर्म करना है। हमारे क्या कर्तव्य कर्म है वो हम लोग देखेंगे। अगर मान लो आपका कर्तव्य कर्म है और अपना नहीं करते हो तो क्या होता है? आपका मन अशांत हो जाएगा ना। अब एक हाउसवाइफ का कर्तव्य कर्म होता है कि अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी करे, बच्चों को देखे। अगर वो अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी ना करे, बच्चों को ना देखे, और जो घर का जो स्वामी है उसका क्या काम है? वो कमा के लाए, पैसा लाए। अब वो पैसा लाता है, अब घर में नहीं देता है, नहीं देखता है, फिर क्या होगा? वो अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है। तो उसके मन में भी एजिटेशन होता है कि हमने कमाया मगर अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं। और गृहलक्ष्मी अगर अपना घर का काम ना करे तो उसके मन में भी एजिटेशन होता है, अरे हमने सारा दिन कर दिया, हमने घर का काम नहीं किया। पछतावा तो आपको होता ही रहेगा। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? कर्म के भागने से नहीं मिलेगी, कर्म के करने से मिलेगी। कर्म आपको करना है। अब एक व्यक्ति कहता है मुझे निष्कर्म नहीं चाहिए। निष्कर्म मतलब ओ हमको वो ज्ञानवान कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप ये कहते हो ना निष्कर्म सिद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आपको पहले कर्म करना है, कर्म योग करना है। कोई आदमी कह सकता है ना हमको ज्ञान नहीं चाहिए इसलिए हम कर्म योग नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, जाओ। तो भगवान कहते हैं कि देखो पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठति और कर्मकृत। तुम एक सेकंड बिना कर्म के रह नहीं सकते, एक सेकंड नहीं, एक क्षण भी नहीं। क्यों? कहते हैं कि अबस हो तुम, तुम्हारे में वो शक्ति नहीं है कि तुम जो है उसको रोक सको। कैसे? कार्य ते ही अवसर कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है, प्रकृति जय प्रकृति के गुण है। प्रकृति के गुण क्या क्या है? सत्व रजस तमस है, गुण है, तीन गुण है। और ये तीन गुण जो है अबस काम करवा देते हैं। अब आपके अंदर अगर रजस गुण आ जाएगा ना आप दौड़ोगे। रजस कैसे आता है? एक अगर डिजायर आ जाए आइसक्रीम खानी है, क्या होगा फिर? घर में तो है नहीं, अब डिजायर आ गई, कामना आने से आपको रजस आ गया, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, रजस हो गया। सत्व सवेरे आपको सत्व गुण रहता है, हाँ शांत। कुछ श्लोकों के बाद में आने वाला है गुना गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति वर्तन करती है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सत्व रजस तमस से बना हुआ है। सारे लोक सारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? वो भी सत्य रजस तमस से बना हुआ है, पांच महाभूतों से बना हुआ है। मेरा शरीर भी पांच महाभूतों से बना हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो किसमें व्यापार चल रहा है? पांच महाभूत का ये शरीर, पांच महाभूत का आपका शरीर। पांच महाभूत कहां से आए? तीन गुण से आए सत्य रजस तमस से। आपका भी तीन गुण से आया सत्य रजस तमस से। तो भगवान आगे जाके कहेंगे कि वर्तन कहां हो रहा है? गुना गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण के अंदर वर्तन कर रहे हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा करता है। चूंकि हमारा शरीर इन तीन गुणों से बना हुआ है इसलिए हम अवश हैं, वो हमको फोर्स करेंगे काम करने के लिए। और हर आदमी अपनी वासना के हिसाब से काम करता ही है, वासना भी त्रिगुण के अंदर ही है। अपनी वासना के हिसाब से सब काम करते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है। कैसे बनता है? सबकी अपनी अपनी कामना है, डिजायर्स हैं, वासनाज हैं, अवस हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता, क्षण मात्र, वन सेकेंड ऑल्सो। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम इन तीन गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। ये हमको फोर्स करते हैं कर्म करने के लिए। यहां सभी प्राणी के साथ अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए। किसको अवश्य करते हैं? अज्ञानी को। बाद में बताएंगे कि ज्ञानी जो है इन गुणों के बाहर चला जाता है, इसलिए ज्ञानी जो है इन गुणों से प्रभावित नहीं होता है। सभी अज्ञानी प्राणी ऐसा पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे जो गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया है। हम लोग अवश्य हैं, ज्ञानी उसके बस में नहीं है, तीन गुणों के बस में नहीं है। क्योंकि जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का भाव होने से उनके लिए कर्म योग संभव ही नहीं है। देखो हमारे में इच्छा होगी तब तो हम जाके कर्म करेंगे और कर्म योग करेंगे। अगर जिसका मन शुद्ध हो गया, ज्ञान मिल गया, उसको फिर और मन शुद्ध करने की दरकार क्या है? हमने पहले ही देखा ना कि कर्मयोग से क्या होता है, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो उसके बाद ज्ञान आएगा। अगर ज्ञान मिल गया, आप ज्ञानी हो गए, फिर भी आपको क्या मन शुद्ध करना है क्या उसके बाद? और नहीं करना है उसको, कर्मयोग नहीं करना है। वो जप करे या मंदिर जाए या नहीं जाए, तीर्थ में जाए नहीं जाए, वेद पढ़े या नहीं पढ़े, पूजा करे या नहीं पढ़े, कुछ नहीं करना है। हमें करना है अज्ञानी को, इससे हमारा मन शुद्ध हो, मन शुद्ध होने से बाद में हमें ज्ञान मिल जाए। देखो कुछ कुछ चीजें आप रोक नहीं सकते, आप चाहो भी तो नहीं रोक सकते। आपके स्थूल शरीर के अंदर जो ना सेल्स है ना छोटे छोटे, जो डॉक्टर होंगे, आज प्रेमल जी नहीं हो बताते आपको कि वो सेल अपने आप करते रहते प्रकृति के हिसाब से है। अब वो बोलते हैं ना आपके भीतर में कैंसर हो गया है, तो क्या हुआ, वो सेल ने अपना एक अपना यूनिट यूनियन बना लिया, वो दूसरों की बात नहीं सुनते, अपना यूनियन के हिसाब से चलते हैं। तो क्या हुआ ये? आपके बस में है नहीं है। आपके प्राण जब चलते रहते हैं क्या होता है, आपको भूख प्यास लगती है, आप रोक सकते हो भूख को प्यास को रोक सकते हो? नहीं। आप जब तक जीवित हो, मन जब तक चलता रहता है, देखो मैं एक एक कोष के हिसाब से जा रहा हूं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, जब तक मन आपका चलता रहेगा सुख दुख लगा रहेगा। जैसे ही आप सवेरे उठते हो तब से शुरू हो जाता है काम, जब तक बुद्धि है तब तक आपके अंदर कर्तृत्व भाव रहेगा, जब तक आनंदमय कोष है तब तक आपके अंदर भोक्तृत्व भाव रहेगा, भोग करने की इच्छा रहेगी। पहले भोग करने की इच्छा आती है फिर कर्तृत्व आता है। आप काम कैसे करते हो, पहले इच्छा होती है आइसक्रीम खानी है, तब फिर दौड़ते हो आइसक्रीम पार्लर ना, तो भोक्तृत्व पहले होता है, भोग की इच्छा पहले होती है, फिर हम कर्म करते हैं। तो उठना बैठना इस सब को अंदर आप जो है अबस है एकदम। अच्छा देखो कई चीजें आप रोक भी नहीं सकते हो, आपको छींक आए तो रोक लोगे, जमाई आई यौनि, एक को देखे सबको आने लगती है, यू कांट स्टॉप। नींद आई है क्या रोक सकते हो? सत्संग में लोग सो जाते हैं, नहीं रोक सकते, यू कांट स्टॉप,
ज्यादा सोते हैं।
इसके अंदर हम सब अवश्य हैं एकदम। देखो मानसिक कर्म, ये तो शारीरिक पर बताया, मानसिक कर्म अगर मान लो आप चुप से बैठ भी जाओ, ये बैठने के अंदर भी कर्तृत्व है, मैं चुप से बैठा हूं, लोग पूछे क्या कर रहा है, मैं चुप से बैठा हूं, मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं किसी को, कर्तृत्व है। अच्छा चुप से बैठे हो तो मन आपका चल रहा है ना, आप जो है शरीर को रोक सकते हो जबरदस्ती, क्या मन को रोक सकते हो? है ताकत आप में मन को रोकने की सोचने की? आज भोजन नहीं करेंगे, मगर भोजन का विचार रोक सकते हो क्या? आज व्रत है हमारा, उस दिन भोजन का कितना विचार आता है, आज हम नहीं नहाएंगे, अच्छा ठीक है भाई ना मत नहाओ, तो नहाने का विचार जो है, वृत्ति जो है वो तो आती है, उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते आप, अवश हैं। उसी तरह आप सोचते हो कि भाई अरे हम तो रात को सो गए, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उस टाइम में कोई कर्म नहीं है। अरे बहुत काम होते हैं, आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, डाइजेशन होता रहता है, काम नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, प्रकृति अबस, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर ये सब काम नहीं चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, या आप जाग नहीं रहे हो, आपका मन नहीं चल रहा है, तो दूसरे लोग व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिर चारपाई लानी पड़ेगी, आपको लेके जाना पड़ेगा, ये काम अपने आप चलते रहते हैं। आप सोए हो तब भी काम चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये है कि ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा, नंबर वन, ये सबसे ऊपर है, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्मयोग से मन शुद्धि होगी, कर्मयोग इतनी दूर तक ले जाएगा, भक्ति योग भी उतनी दूर तक ले जाएगा, शास्त्र अध्ययन भी उतनी दूर तक ले जाएगा, उसके बाद में लास्ट में ज्ञान चाहिए। तो हम लोग के लिए सहज उपाय क्या है? हम लोग के लिए, अज्ञानियों के लिए भगवान कहते हैं, हम लोग सब अर्जुन हैं, भगवान कहते हैं हम लोग के लिए क्या है, कर्मयोग है। आप सेवा भाव से कर्मयोग करो, प्रसाद बुद्धि से कर्मफल लो, ये हमको करना है। अब भगवान कहते हैं कि सुनो, कुछ लोग दूसरे किस्म के भी होते हैं, वो क्या है, जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता। आत्मज्ञानी तो नहीं है, उनकी बात छोड़ दो, मगर शास्त्र विहित कर्म नहीं करेंगे, शास्त्र ऐसा करो न नहीं करेंगे, उसका वह कर्म न करना बुरा है, यह कहते हैं भगवान। कहते हैं तुम नहीं करते हो तो ये इज नॉट ए गुड थिंग, आपको करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं
वर्स नंबर सिक्स श्लोक 6,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य,
यास्ते मनसा स्मरम्, यास्ते मनसा स्मरम्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा,
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा,
मिथ्याचारस्य उच्यते,
मिथ्याचारस्य उच्यते,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, यास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारस्य उच्यते।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियां हाथ पांव, आपने बोलना, आपने इनको बंद कर लिया, जबरदस्ती बंद कर लिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों को संयम कर दिया, मगर यास्ते मनसा स्मरण, मगर मन, मन का क्या किया, मन के अंदर स्मरण चल रहा है, मन कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, वो क्या कर रहा है, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते, इंद्रिय अर्थ, अर्थ मतलब विषय, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, मन क्या सोचता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके बारे में ही सोचेगा, और क्या सोचेगा, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच विषय हैं, और मन उन सारे विषयों का संतुलन करता है, उनको ग्रहण करता है, उनका डिसीजन लेता है, तो मन चिंतन कर रहा है, आपने कर्म इंद्रियों को रोक दिया, मन चिंतन कर रहा है, विषय, विषय मतलब क्या होता है, विषय मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, अरे विषय मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आप पूछोगे कैसे, कई आदमी पूछे किस विषय पर चर्चा चल रही है, कोई बोलेगा पॉलिटिक्स बोलेगा, कोई बोलेगा संस्कृत की चर्चा चल रही है, कोई बोलेगा केमिस्ट्री की चर्चा हो रही है, फिजिक्स की चर्चा हो रही है, विषय हो गया ना, किस विषय पर चर्चा चल रही है, पॉलिटिक्स पर विषय, और यहां पर कौन से विषय की बात हम कर रहे हैं, यहां पर विषय जो है ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो विषय मतलब सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, यहां पर विषय जो है ऑब्जेक्ट है, स्मरण कर रहा मतलब वैराग्य नहीं है, देखो एक के बाद एक पकड़ते जाना है इसको, आपने कर्म इंद्रियों से रोक लिया अपने आप को, बाहर नहीं कुछ कर रहे हैं, मैं भीतर क्या है, भीतर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विचार चल रहा है, विचार चल रहा है तो इसका मतलब आपको वैराग्य नहीं है, आपको अगर वैराग्य नहीं है तो आपने आत्मा अनात्मा का विचार नहीं किया है, अगर आत्मा अनात्मा का विचार आपने नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, तो आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है, अगर आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने कर्मयोग नहीं किया है, देखो एक के बाद ये स्टेप जो है पीछे चलता जा रहा है, ये पक्का साइंस है, मन में स्मरण हो रहा है इसका मतलब आपको वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने विवेक नहीं किया, विवेक क्या होता है? आत्मा अनात्मा का विवेक करना है आपको। क्यों नहीं किया आत्मा अनात्मा का विवेक? मन शुद्ध नहीं है। हम विवेक करते हैं, कौन सा विवेक करते हैं? अनात्मा अनात्मा का विवेक करते हैं। सारा जीवन किया हमने अनात्मा अनात्मा का विवेक। कौन सा कपड़ा खरीदे, लाल वाला कि पीला वाला? दोनों कपड़े अनात्मा है। ये मकान की वो मकान अनात्मा, ये गाड़ी की वो गाड़ी अनात्मा। हमने विचार बहुत किया है, सारी जिंदगी विचार किया। कहाँ इन्वेस्ट करें, इस कंपनी के शेयर में कि उस कंपनी के शेयर में? अनात्मा। बहुत विचार किया मगर कभी आत्मा अनात्मा का विचार नहीं किया। आत्मा अनात्मा का विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, मन विषयों में फंसा हुआ है। मन क्यों नहीं शुद्ध है? कर्मयोग नहीं किया है। इस वास्ते मन शुद्ध नहीं है। तो मन के अंदर वो स्मरण कर रहा है। तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार, शंकराचार्य जी कहते हैं मृषाचार है, पापाचार है। ऐसा आचरण पाप है, आचरण पाप है, शंकराचार्य जी कहते हैं। आपने बगुला देखा? बगुला, बगुला भगत भी कहते हैं। वो क्या करता है? वो जो है पानी के अंदर में एक पांव पर खड़ा रहेगा बगुला भगत, एकदम स्थिर, हिलता नहीं है। सब कर्मेंद्रियां एकदम बंद है, मन मन चल रहा है, देख रहा है कहां मछली है, फट बगुला भगत। तो ये हम लोग का बगुला भगत वाला हिसाब है। कर्मेंद्रियां बंद, मन के अंदर में विषयों की कामना चल रही है। तो मिथ्याचारी भी बोलते हैं दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के मिथ्याचारी? हाँ, बोले एक पब्लिक के अंदर दिखाने के लिए होते हैं, ये महात्मा है, महात्मा जो है बहुत पहुंचे हुए हैं, आप इनको प्रणाम करो, दक्षिणा दो, ये दक्षिणा छूते भी नहीं है। और प्रश्न करो, मौन है, आपको प्रश्न का उत्तर भी नहीं देंगे। ये मिथ्याचारी है। और महात्मा जी अंदर से क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना दिया, इसने कितना दिया, इसने क्या दिया? मिथ्याचार। अब दूसरे महात्मा है, वो वन के अंदर गए, फॉरेस्ट में गए, वो वहां पर विषयों का चिंतन, वहां विषय नहीं है, मैं वहां पर भी एकांत में बैठ के विषयों का चिंतन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का चिंतन करते हैं। ये दोनों ही मिथ्याचार है। आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है। एक तीसरा व्यक्ति भी है। अच्छा, वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य कैसा होना चाहिए? मान लो आपने किसी फाइव स्टार होटल में जाके अच्छा खाना खाया, आपको खाना ज्यादा पसंद आया, आपने भर के पेट खा लिया। खाने के बाद में अब आप नेचुरल, रोज तो ऐसा नहीं करते हैं ना हम लोग, अब इंडाइजेशन हो गया, अब क्या करें? वो जब तक शांति नहीं मिले बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप सोचते हो कि अगर वॉमिट हो जाए किसी तरीके से तो बच जाए। अच्छा, आपने बड़े प्रेम से डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खाई ना, अब वॉमिट हो गया, आप खोजोगे कौन कौन सी डिश उसके अंदर है, आप छुओगे उसको वॉमिट करने के बाद में? मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत लोग जो है कौन कौन सी डिश खाई, क्या क्या था, अब उसको खोजो उसके अंदर वॉमिट के अंदर है कि नहीं, छुओ, यू डोंट वांट टू सी आल्सो टच आल्सो, नहीं छूना चाहते हम। वैराग्य ऐसा होना चाहिए विषयों से, इस किस्म का वैराग्य होना चाहिए। हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि के अंदर तीन उदाहरण देखे थे, ब्यूटीफुल क्वीन की रॉटन डेड बॉडी को देखकर कौन आलिंगन करने जाएगा? वैसे ही हम डेड बॉडी को छूते नहीं है, कोई नहीं छूना चाहता उसको। संत ज्ञानेश्वर एग्जाम्पल देते हैं वैराग्य कैसा वैराग्य होना चाहिए। ब्यूटीफुल क्वीन डेड रॉटन बॉडी मक्स निकल रहे हैं पानी निकल रहा है ये निकल रहा है विल एनी पर्सन विल गो एंड टच बैराग्य आपको बहुत प्यास लगी है पानी नहीं है लेपर्स के उंड में से पस निकल रहा है विल यू रन एंड ड्रिंक दैट पस आपको प्यास लगी है जाओगे इतना वैराग्य होना चाहिए आपको नहाने की बड़ी इच्छा हुई है नहाने और वहां मोल्टन टब ऑफ आयरन रहा है मोल्टन टब ऑफ आयरन आप डुबकी लगाओगे आयरन के अंदर में नहाना है आपको ऐसा वैराग्य होना चाहिए इस किस्म का वैराग्य आना चाहिए तब वैराग्य होगा अब एक दूसरे किस्म का व्यक्ति है वो कैसा है देखते हैं नेक्स्ट श्लोक
यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैकर्मयोगम् असक्तस्सविशिष्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैकर्मयोगम्
यह तू यह मतलब जो व्यक्ति तू मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पर्सन अर्लियर पर्सन क्या था मिथ्याचारी था केवल दिखाता था यह तू इंद्रियानी मनसा नियम में आरभते अर्जुन उसने मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल किया ज्ञान इंद्रियों से मन के द्वारा इनको कंट्रोल किया है और वो कर्म कर रहा है अर्जुन कैसे कर रहा है कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त सब शिष्यते कर्मेंद्रियों से क्या कर रहा है कर्म योग कर रहा है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया मन उसके साथ में है और वो अब कर्मेंद्रियों से कर्म योग कर रहा है कैसे कर रहा है असक्त नॉट अटैच सक्त मीन्स अटैच असक्त मीन्स नॉट अटैच कर्मयोग कर रहा है मगर उससे अटैच नहीं है असत सब विशिष्टते भगवान कहते हैं मिथ्याचारी से बेटर है देखो ये भी अज्ञानी है ये व्यक्ति भी अज्ञानी है ज्ञानी नहीं हुआ अभी मिथ्याचारी वाला भी अज्ञानी था मगर मिथ्याचारी से ये बेटर है बेहतर है क्यों क्योंकि इसने अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा उसको कंट्रोल किया और कर्मेंद्रियों द्वारा रिस्पॉन्स कर रहा है एक्शन कर रहा है कैसे एक्शन कर रहा है कर्मयोग द्वारा कर्मयोग क्या है आपको याद रखना होगा बराबर हम तो 1000 बार भूल चुके हैं कर्मयोग क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है भगवान के लिए कर्म करना ये नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है सेवा के रूप में करना है और प्रसाद बुद्धि से कर्मफल लेना है भगवान के लिए भी जब कर्म करोगे तो कर्मफल आएगा बड़ा अच्छा कर्मफल आएगा उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें प्रसाद बुद्धि से तो बहुत बेहतर होगा देखो मिथ्याचारी और ये व्यक्ति सदाचारी है मिथ्याचारी क्या कर रहा था फिजिकली नॉट एक्टिव मगर माइंड बहुत काम कर रहा था उसका कौन कितनी दक्षिणा दे रहा है देख रहा था वन में बैठा हुआ महात्मा विषयों में चरण कर रहा था इनएक्टिव फिजिकली मगर माइंड और इसका सदाचारी का फिजिकली वर्क कर रहा है मिथ्याचारी वर्क नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है और ये काम कर रहा है मगर मन इसका कंट्रोल है उसका मन कंट्रोल नहीं है दोनों ही अज्ञानी हैं भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन तुम भाग जाना चाहते थे कर्मभूमि से भाग के तुम जो है हिमालय जाना चाहते थे ब्राह्मण बनना चाहते थे भिक्षा लेने के लिए तैयार थे तो तुम्हारा वो आचरण मिथ्या आचरण हो जाता। वहां जाके भी तुमको युद्ध भूमि के धनुष और इसका ख्याल आता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और यहां पर भिक्षा मांग रहा हूं, तो क्या करूंगा, अब हमको क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग तो सब अज्ञानी है ना, क्या करना चाहिए।
नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो य कर्मणः,
कर्म ज्यायो य कर्मणः,
शरीर यात्रा पिचते, शरीर यात्रा पिचते, न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म ज्यायो य कर्मणः, शरीर यात्रा पिचते, न प्रसिद्धेद कर्मणः।
क्या कर्म करें, भगवान कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान के लिए तुमको क्या करना है, कहते हैं नियतम कुरु कर्म, नियतम कुरु कर्म, बोलो कर्म आपको करना है, कौन से कर्म करने हैं, बोले नियत कर्म करने हैं, नियत कर्म करने हैं, करना ही होगा। तो ये नियतम क्या है, बोले शास्त्र विहित कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म करो, शास्त्र में आपके कर्तव्य कर्म लिखे हुए हैं, आप ब्रह्मचर्य में हो कि गृहस्थ में हो कि वानप्रस्थ में हो कि संन्यास में हो कि आप ब्राह्मण में हो कि आप क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, सबके कर्म लिखे हुए हैं, क्या करना चाहिए आपको। देखो कर्तव्य कर्म क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे आपने कहीं पर जॉब पर अप्लाई किया तो पहले तो लिखते ना कि भाई आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप क्या क्या करोगे। आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो आपको बता देते हैं आपका ये ड्यूटी है, आपको ये करना है, तो वो आपका कर्तव्य कर्म बन गया। वहां पर आप उस पोस्ट के लिए में अगर बैठना चाहते हो तो वो कर्तव्य कर्म आपको करना होगा, दूसरों का नहीं करना है। आपके नीचे के लोग होंगे, ऊपर के लोग होंगे, उनके कर्तव्य कर्म दूसरे हैं, आपका कर्तव्य कर्म कंपनी देखेगी, आपको ये कर्तव्य कर्म करके देना है। अब जैसे ब्रह्मचारी का क्या कर्म है, ब्रह्मचारी का कर्म है कि वो अपना वेद पाठ करे, सवेरे उठ के चैंटिंग करे, होमवर्क करे। बच्चों का क्या कर्म है, बच्चों का कर्म है सवेरे उठ के स्कूल जाए, स्कूल में पढ़े, थोड़ा देर खेले, फिर होमवर्क करें, ये उनकी ड्यूटी है, उनको करना है। देखो सबसे पहले घर में सबसे छोटे बच्चे का कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता है, जो सबसे अभी तुरंत पैदा हुआ बच्चा है ना उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उसको तो आप खाली खिला दो पिला दो, उसके बाद फिर उसका खेला देखो, फिर उसके ऊपर हंसी देखो, उसकी मुस्कुराहट देखो। मत जैसे ही थोड़ा 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 बड़ा होता है तब हम कहते हैं सेम सेम, देखो कर्तव्य कर्म उसको समझाना शुरू कर दिया हमने कि आपको जो है ठीक से कपड़े पहनने हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि चलो अब स्कूल जाओ, कर्तव्य कर्म पढ़ो, पढ़ लिया, जॉब में गया, तो जॉब में जाने के बाद में फिर जॉब की स्पेसिफिकेशन आ गई, आपको ये कर्तव्य कर्म करने हैं। उसके बाद आप बोलोगे मैरिज, तो पृष्ठ आ जाता है, तो वो आपको बताता है आपका क्या कर्तव्य कर्म है। आप लोग को याद है शादी के टाइम में जो जो पृष्ठ ने कहा था कर्तव्य कर्म, आप सबको कहे थे, पति और पत्नी दोनों को कहे थे, पति को ये काम करना है, पत्नी को ये काम करना है, कर्तव्य कर्म पंडित ने बताए थे आपको। फिर उसके बाद में आपको सोसाइटी में कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको पालन करने होंगे। उसके बाद शास्त्र में वर्ण और आश्रम के अनुसार मैंने आगे ही आपको बताया ब्राह्मण को क्या करना है, पठन पाठन ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, वैश्य का क्या काम है, बिजनेस वैश्य का काम है, शूद्र कौन है, तो शूद्र जो है सेवा करेगा, जनरल इंप्लॉइज वो है शूद्र। इसके अलावा भी हमारे पांच ऋण हैं जो हमको करने चाहिए, जैसे भूत ऋण, देव ऋण, नृ ऋण, शास्त्र ऋण, पितृ ऋण। चलो पीछे से चलते हैं। पितृ ऋण हमारे माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो क्या हम अपने कर्तव्य करते हैं? उनका ऋण कैसे चुकाओगे आप? उनकी सेवा करके तो चुकाना होगा, या तो आप अपने पास रखो, नहीं तो उनके लिए सुविधा करो। हम अमेरिका बैठे हैं, माँ बाप वहां बैठे हैं, तो उनकी व्यवस्था करो आप। उसके बाद में शास्त्र ऋण है, शास्त्र आपको ज्ञान दे रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि शास्त्र अगर हमको ज्ञान दे के हमको मुक्ति अगर दे सकता है, तो ये क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम शास्त्र का प्रचार करें? हम ज्ञानी बन गए, बस छोड़ दो, हमारा काम हो गया। अगर ऐसे ज्ञानी करने लगते तो स्वामी चिन्मयानंद जी कभी सारी दुनिया में नहीं घूमते। आपको अगर ने शास्त्र ने कुछ दिया है तो फिर शास्त्र का प्रचार भी करो। निर्ण निर्ण क्या है? निर्ण है कि हम जब इस दुनिया में आए तो हमको तो रास्ते, कॉलेज सब कुछ बना हुआ मिला, हमने तो नहीं बनाया। मकान, दुकान सब कुछ बना हुआ था, मॉल बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था। हम तो आए, हमने तो फुटपाथ पर चलना शुरू कर दिया, बाइसाइकिल लिया अपना, साइकिल घूमते रहे, हमको तो बनाना ही पड़ा। किसने बनाया? बहुत लोगों ने अपना श्रमदान दिया उसमें, हम आज उसका उपभोग कर रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि कुछ हम उनके लिए करें? क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम अपनी अतिथियों को भगवान के रूप में देखें, बुलाएं, सेवा करें? ये निर्ण है। देव ऋण, देव ऋण आपको, जैसे हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है कि हर इंद्रियों का एक एक देवता है, आंख का भी देवता है, नाक का भी देवता है, जिनके कारण हम देख रहे हैं, और कॉस्मोस के अंदर भी जो है बहुत से देवता हैं, डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट चल रहा है, तो क्या उनके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है? उनके प्रति भी कर्तव्य है, पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। भूत, पांच महाभूत हैं, केवल एक इंसान को छोड़ के बाकी और सब अपना अपना काम ठीक करते हैं, एक इंसान ने सारे भूतों को पल्यूट किया है। आप पृथ्वी को पल्यूट किसने किया? खाद कौन डालता है? फर्टिलाइजर कौन यूज करता है? पानी को किसने खराब किया है? कोई जानवर आके करता है? नहीं, मनुष्य करता है। वायु का प्रदूषण किसने किया? क्या एनिमल्स गाड़ी में चढ़ते हैं, चलाते हैं? नहीं, हम भी लोग करते हैं। अभी तो कहते हैं स्पेस में भी गार्बेज हो गया है, ऊपर भी बोलते हैं बहुत गार्बेज घूम रहा है, उसका भी एक योजना बनानी पड़ेगी, उनको सफाई करनी होगी, वहां भी गार्बेज है। तो अपने कर्तव्य कर्म करो। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है, उस नियत अर्थात नित्य कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है। अगर मान लो आप कोई भी काम करते हो, देखो अकर्म से कर्म बेटर है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसके बदले साकाम करना अच्छा है इन कंपैरिजन टू कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर्म जायो या कर्म ना, अकर्म से कर्म करना अधिक श्रेष्ठतर है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उपासना और प्रायश्चित, ये चार आते हैं नियत के अंदर। ये जो वर्ड नियत आया ना, 18वें अध्याय में भी नियत कर्म आया है, पहले यहां पर नियत कर्म यहां पर पहली बार आया। कर्म कितने किस्म के हैं? 6 किस्म के हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित है, उपासना है, काम्य है, निषिद्ध है। भगवान यहां पर शास्त्र में निषिद्ध कर्मों की बात नहीं करते, किसी जगह आपको निषिद्ध कर्म के बारे में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। काम्य कर्म को भी छोड़ना है हमें, काम कर्म क्या मतलब क्या हुआ? जो काम हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वो काम कर्म है, जो काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो कर्मयोग बन जाता है। इतना ही फर्क है। तो हमको नित्य कर्म करने हैं तो नित्य कर्म किसके प्रति है? देखो नित्य कर्म अपने प्रति एक होता है, रोज नहाना धोना, अपने को साफ रखना, ये तो बाहर का है। मन को शुद्ध करना, मन जो दूषित है वो कैसे साफ होगा? हम ऊपर की सफाई बहुत करते हैं, ऊपर की सजावट बहुत करते हैं, मगर मन मन के लिए कुछ भी नहीं करते हम। उसके बाद में आपका कर्म है किसके प्रति? आपके परिवार के प्रति है, आप सोसाइटी के प्रति है, कंट्री के प्रति है, यूनिवर्स के प्रति है। नित्य कर्म ये आपके हैं, नैमित्तिक। कभी कभी किसी के यहाँ जाना पड़ गया, कोई अस्वस्थ है, कहीं पर श्राद्ध हो रहा है, कहीं पर शादी है, जाना होगा आपको, नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित क्यों करें? पाप किया आपने, आपको दुख हुआ कभी कि नहीं हुआ है? अगर दुख हुआ है तो आपको प्रायश्चित करना है, आगे दुख ना आए। तो प्रायश्चित के लिए आप जो है तीर्थ भ्रमण करो, गंगा स्नान करो। आप बोलोगे आप कहाँ बैठे हुए? शिकागो में बैठे हुए। आप बोलो तीर्थ भ्रमण करो, कौन सा तीर्थ है शिकागो में, कहाँ गंगा है? तो तीसरा उपाय है कि आप जप करो भगवान का। जप आप जहां भी मर्जी कर सकते हो, उससे भी आपका मन शुद्ध होता है, उससे आपका प्रायश्चित हो जाएगा। और चौथा उपासना, रोज हमको उपासना करनी है, नियमित समय पर इतनी उपासना, हम आधा घंटा एक घंटा आपकी जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आपको करना है। अगर आप नहीं करते हो, हम तो लेजी हो गए, आलस आ गया, हम नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धे त कर्म न। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। खाने के लिए तो हाथ तो हटाना पड़ेगा ना, एक बार कोई खाना ला के भी दे दे, अपने हाथ से तो उठा के खाना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। एक शरीर यात्रा, एक जीव यात्रा है। जीव यात्रा तो भूल जाओ, जीव यात्रा क्या है? बद्ध से सिद्ध होना है। हम लोग अभी सब बद्ध हैं, कर्म हमको बांधे हुए हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली बांधा हुआ है। तो बद्ध से सिद्ध होना है। बद्ध से सिद्ध कैसे होंगे? जिनकी उम्र हो गई है ना, उनका अपना अनुभव है, उनका अपना तजुर्बा है कि मैंने धन भी कमाया, मेरी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा तीनों पूर्ण हो गए। रिटायरमेंट के पहले आप सोचोगे कि हाँ, पुत्रेष्णा विवाह कर लिया, पुत्र हुए, पुत्री हुए, हो गया। वित्तेष्णा पैसे कमाए, सब 401 में कहाँ कहाँ डाल के रखे हैं, वो भी हो गए, वित्तेष्णा भी हो गई। लोकेष्णा मेरे को ऊंचा पोस्ट भी मिला, लोग मुझे को प्रतिष्ठित आदमी है, हमें पहचानते हैं। फिर सोचते हैं कि अरे अभी तक भी मेरे को संपूर्ण सुख नहीं मिला, इसके बाद ही मैं दुखी हूं, तब वो मुमुक्षु हो जाता है। फिर हो जाता है चिन्ह मिशन में, पूछता है सारी जिंदगी ये किया मगर सुख नहीं मिला। सब लोग आते एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मगर शांति नहीं है। ये सब कोई आके बोलते हैं, सब कुछ दिया हुआ भगवान का, वो कहते हैं अपने आप से भगवान का दिया हुआ सब कुछ है महाराज, मगर शांति नहीं है। अब वो शांति तो आप खरीद नहीं सकते, शांति तो मिलती नहीं है किसी सेल पर, तो शांति कहाँ मिलेगी? तो बोलेंगे तुम सारी जिंदगी तो अशांति में तो थे, जगत तो अशांति दुखालय है, उसी में घूमते रहे, उसी को बढ़ाते रहे, सोचते थे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, हुआ नहीं। फिर बोलेंगे वैराग्य छोड़ो इसको, हमने कई बार प्रूव कर दिया है कि इस दुख जो है केवल अनात्म वस्तु से आता है, और हम सब उस अनात्म वस्तु के अंदर सुख खोजने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम कभी भी इसके अंदर सफल नहीं होंगे। अगर आप जाग जाओ तो अच्छा है, जितनी जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है। तो जीव यात्रा तो और मुश्किल है, उसके बाद में फिर वो सत्संग में जाएगा, फिर उसका जिज्ञासु होगा, जब सत्संग में जाएगा तब सत्संग पूछेगा भाई तुम कौन हो, तुम शरीर तो नहीं हो, शरीर आत्मा नहीं है, तुम कौन हो। तब उसको आस्ते 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 वो अग्रसर होगा। भगवान ने आगे भी कहा मां कर्म फल हेतु भू माते संग अस्तु अकर्मनी, कि कभी भी कर्म फल को उद्देश्य रख के कर्म नहीं करो। अब बहुत लोग उसका ऐसा कहते हैं कि भाई कर्म करने, मिस इंटरप्रिटेशन बहुत है इसका। लोग कहते हैं कि आप कर्म करो मगर फल आपको नहीं मिलेगा। तो कई बोलते हैं फल नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करें। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कभी करना, कभी अकर्म को नहीं पकड़ लेना कि हम कर्म नहीं करेंगे। देखो धनी भी काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता मतलब उसके पास धन है, नौकर चाकर है, सब दे जाते हैं, मगर चलता नहीं है। कुछ दिन बाद बोलता घुटने में दर्द है। अब घुटने में दर्द है तो नौकर के चलने से धनी के एक्सरसाइज तो नहीं होगी, किसको करना होगा, उसी को करना होगा ना, कर्म तो करना ही होगा। न प्रसिद्धेत, मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहो। अब ज्ञान योग है सांख्या नाम, कर्म योग है योगी नाम। अर्जुन कहता है आपको अगर सर्वोत्तम चाहिए, भगवान कहते हैं कि अगर आपको सबसे ऊंची चीज चाहिए तो आपको क्या करना है, मतलब कर्म योग करना पड़ेगा आपको। देखो आपको ये चॉइस नहीं है कि हम कर्म करें या नहीं करें, कर्म आप अवश्य हो करने के लिए। केवल आपके पास अगर चॉइस है तो ये इतना ही है, व्हाट टू डू हाउ टू डू, क्या करें और कैसे करें। क्या करें मतलब निषिद्ध कर्म करें या काम्य कर्म करें या नियत कर्म करें, तीन चॉइस है आपके पास में। नियत कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये एक ग्रुप है, उसको हमने नाम दिया नियत कर्म। दूसरा ग्रुप है काम्य कर्म, डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन। तीसरा है निषिद्ध कर्म, इसमें चॉइस आपको है कौन सा करें हम। अब कैसे करें, साकाम करें कि निष्काम करें, यह भी चॉइस आपके पास में। अगर आप साकाम कर्म करते हो आप बनते हो, आप अगर निष्काम कर्म करोगे आपका माइंड प्योरिफाई होगा। तो आपके पास ये चॉइस है कि हम कौन सा कर्म करें और कैसे करें। कर्म करने के लिए आप अवश्य हो, कर्म आपको करना होगा। तो भगवान कहते हैं नियत कर्म करना चाहिए सबको करना है। नियत कर्म करो, ऑर्डर है ये, ऑर्डर, नियत कर्म करो, करो। तो ये हम लोग सबके लिए ये भगवान का निर्देश है।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः।